यह 66 नंबर का श्लोक है। इस श्लोक के अंदर भगवान पहले युक्त की बात करते हैं, फिर भावना की बात करते हैं और फिर शांति की बात करते हैं। तीन बातें श्लोक में बड़ी महत्वपूर्ण हैं। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम्। बता दिया। पहले थोड़ा सा एक बात समझ, शंकराचार्य क्या कहते हैं इसके बारे में, आप विचार करो थोड़ा सा। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अयुक्त व्यक्ति के पास में बुद्धि नहीं है, सीधा सीधा अर्थ हो गया। लेकिन कौन सी बुद्धि नहीं है उसके लिए कहते हैं न अस्ति न विद्यते न भवति इत्यर्थ बुद्धि आत्मस्वरूप विषया अयुक्तस्य। भाष्यकार लिखते हैं, देखो आप लोगों ने भी कितना पुण्य किया होगा, बताओ। हिमालय की गुफा में लिखा गया जो भाष्य, जंगलों में लिखा गया जो भाष्य, और उस भाष्य को आप बंबई में एयर कंडीशन हॉल में बैठ के सुनते हो, तो कहीं ना कहीं अदृष्ट तो जुड़ा होगा जरूर। जिस चिंतन को करने के लिए शंकराचार्य ने केरल छोड़ करके आज से 1200 वर्ष पहले हिमालय में जाने की हिमाकत करना, वहां की ठंडी गर्मी भूख प्यास सहन करना, जैसे पुराने लोग बताते हैं कि कितनी मेहनत से कमाते थे उन्होंने कभी, लेकिन उनके बच्चों को सुख सहज उपलब्ध हो जाता है, उसका कारण क्या है कि माता पिता से उनका कोई संबंध है। ऐसे हम लोगों का भी शंकराचार्य के साथ कोई संबंध तो होगा ना, कृष्ण के साथ कोई संबंध तो है ना हमारा, नहीं तो जो चीजें इतनी दुर्लभता इतनी कठिनाई से प्राप्त हुई हैं, उन चीजों को हमें इतने सहज भाव से प्राप्त होना, इसमें कुछ ना कुछ तो हमारा पुण्य है ना भाई। हाँ, बहुत बड़ा पुण्य है। शंकराचार्य ने कहा तीन चीजें ये भगवान के अनुग्रह से प्राप्त होती हैं, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम गीता आपने पढ़ी होगी। शंकराचार्य कहते हैं कि ब्राह्मण की रक्षा से वैदिक धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। ब्राह्मणत्वस्य ही रक्षणे न रक्षितो स्यात् वैदिको धर्म। ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मणत्व होना चाहिए, उससे ही वैदिक धर्म की रक्षा होगी। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो व्यक्ति अयुक्त है उस व्यक्ति के पास में बुद्धि नहीं है। तो कौन सी बुद्धि नहीं है? आत्मा के स्वरूप को जानने की बुद्धि नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा है रूप के जाल में उलझ गया है, और एक व्यक्ति ऐसा है वो स्वरूप तक पहुंचना चाहता है। तो स्वरूप तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को युक्त बनना पड़ता है, और रूप तक पहुंचने के लिए युक्त बनने की जरूरत नहीं है। इसलिए शंकराचार्य ने कहा बुद्धि आत्म स्वरूप विषया, आत्मा को समझने वाली बुद्धि अयुक्त व्यक्ति के पास में नहीं है। तो बोले भाई ये आत्मा के स्वरूप को समझने की बुद्धि किसके पास में है? तो बोले युक्त के पास में है। क्यों? युक्त का अर्थ क्या किया पीछे मालूम है? युक्त आसीत मत परः, जो परमात्मा परायण है वो युक्त है। तो युक्त व्यक्ति के लिए बताया, कैसे युक्त बने? तो उसके लिए बताया कि युक्त बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है श्रवण। क्या? श्रवण। आदमी जब मरता है अथवा संन्यास लेता है तब वो जिंदगी का सबसे बड़ा सच बोलना चाहता है। और वो सच अपनी पत्नी के सामने बोलना चाहता है। याज्ञवल्क ने कहा आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य। हे मैत्री, मैं तुझे एक बात बताता हूं। आत्मा के बारे में श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने से क्या होगा? बुद्धि युक्त बनती है। युक्त जैसे थोड़ी देर के लिए आप समझ लो कि अभी प्रेमपुरी में यदि आपको प्रवचन सुनना है तो आपको यहां आना पड़ेगा, और टीवी में सुनना है तो घर में बैठ के आप बटन दबा लो। सीधी बात है ना? इसी प्रकार यदि आत्मा के बारे में सही आपको सुनना है तो आपको सम दम इंद्रियों का निग्रह, मन का निग्रह, इनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इंद्रिय और मन का जो निग्रह है वह आदमी को युक्त बनाता है। इंद्रिय और मन का जो निग्रह है वो आदमी को युक्त बनाता है। और युक्त व्यक्ति के अंदर एक योग्यता आती है। किस चीज की योग्यता आती है? आत्मा को समझने की उस व्यक्ति के अंदर योग्यता आती है। अयुक्त व्यक्ति के पास में आत्मा के स्वरूप को समझने की योग्यता नहीं है। जैसे अंधा कोई व्यक्ति है, अंधे व्यक्ति के पास में रूप को देखने की योग्यता ही नहीं है। वो दिन पटक सिर पटकता रहे, दिन भर बैठा रहे, लेकिन वो शाम तक कुछ देख नहीं पाएगा। उसकी जिंदगी में समय बर्बाद के अलावा कुछ नहीं होता है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। यदि हे अर्जुन, बुद्धि का अर्थ है आत्मा के स्वरूप को जानने की योग्यता। यदि आपको आत्मा के स्वरूप की जानने की योग्यता प्राप्त करनी है तो आपको युक्त होना पड़ेगा। बोले युक्त होना पड़ेगा, क्योंकि आप विषय के स्वरूप को जान चुके हैं और विषय के स्वरूप को जान करके आप विषय के स्वरूप को त्याग रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए छोटा सा उदाहरण दे दूं, वाल्मीकि ने विषय के स्वरूप को जाना, पाप में न पत्नी साथ देगी न बेटा साथ देगा, जो मैंने पाप किया है वो मुझे भोगना है, इसका नाम है जानना। और इस प्रकार जब व्यक्ति जान लेता है फिर पुनः उस तरफ प्रवृत्ति नहीं होती। तो आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए क्या होना पड़ेगा? युक्त होना पड़ेगा। युक्त होगा तो बुद्धि होगी। तो युक्त का अर्थ क्या कर दिया? तो युक्त का अर्थ है एक तो समाधि युक्त होना, और युक्त का अर्थ दूसरा अर्थ किया है युक्त आसीत मत परः, तीसरा अर्थ किया है युक्तः कर्म फल त्यागी शांतिम आपनोति नैष्टिकः। अर्थ दो पड़ती है। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अयुक्त है वो व्यक्ति विषयों के जाल में उलझ जाता है, वो आत्मज्ञान तक नहीं पहुंचता। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, उसका कारण क्या है? अयुक्त शब्द का क्या अर्थ किया है मालूम है? अयुक्तः काम कारेण फले सत्तो निबद्धते। अयुक्त व्यक्ति ऐसे जाल में उलझ जाता है कि जितने बाहर निकलने की कोशिश करता है उतना ही अंदर फंसता चला जाता है, उतना ही फंसता चला जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा के स्वरूप को जानने की योग्यता अयुक्त व्यक्ति के पास में नहीं है। और अयुक्त व्यक्ति का अर्थ होता है जिस व्यक्ति के पास में समदमादि साधन नहीं है, और समदमादि साधनों को उसको कहां से अर्चन करना चाहिए उसकी भी चर्चा कर दिया। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्। समदमादि संपन्न होने के लिए उसको गुरु के पास में जाना चाहिए। अब एक बड़ी बात है, गुरु का महत्व तो बता दिया, लेकिन एक बात मैं आपको बार बार बोलता हूं कि हिंदू संस्कृति की सबसे बड़े पतन की बात यह है हम लोग व्यक्तियों के पीछे दौड़ते हैं। हमारे भगवान इतने हो गए कि शायद असली भगवान खो गए नकली भगवानों के जंगल में। अरे पंडित जी को लाते हो आप, शादी कराते हैं, देखा कभी शादी पंडित कर किया है आप लोगों? तो सब भुक्त भोगी हो, योगी ही भुक्त भोगी। तो पंडित क्या करता है? और लड़की का हाथ पकड़ करके और लड़के के हाथ में दे देता है, और पंडित स्वयं यदि लड़की का हाथ पकड़ करके भाग जाए तो क्या होगा फिर? तो पंडित की पिटाई नहीं होनी चाहिए? ऐसे ही है महात्मा का अर्थ, गुरु का अर्थ यह है कि जो भक्त का हाथ पकड़ करके भगवान को, लेकिन आजकल के गुरु तो ऐसे हैं कि वो भगवान को बाहर फेंक देते हैं और गुरु की फोटो वहां रख देते हैं। ये साधन है सब। जो व्यक्ति सत्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पीछे दौड़ता है वो व्यक्ति जीवन में कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। आपने सुना याज्ञवल्क ने पूछा जनक, जनक ने पूछा याज्ञवल्क से सन्यास का क्या स्वरूप है? उसने कहा कल बताएंगे हम तुम्हारे को। घर में गया तो जो सारी उपनिषद तभी हुई है वहां पे, वो मैत्रेय और याज्ञवल्क का जो संवाद है, वो संवाद करके आए और जनक के महल में गए। तो वहां पर उसके महल के अंदर भी ऐसे एक हॉल, प्रेमपुरी से भी बढ़िया हॉल होगा मुझे लगता है, इस हॉल का तो कभी कभी रूप रंग बदलता रहता है, देखिए कभी कैसे कैसे होता रहता है। तो अभी तो ठीक है, थोड़ी दिन आप लोगों की चलती है तो ठीक है, कुछ दिनों के बाद तो प्रेमपुरी के ऊपर भी पर्दा लग जाएगा ऐसा है। विचार करके देखो थोड़ा, जब गया वहां तो जनक को बुलाया, जनक से कहा कल आपने क्या पूछा था? उसने कहा महाराज मेरे मन में यह हुआ कि सन्यास का क्या स्वरूप है मैं जानना चाहता हूं।
तो याज्ञवल्क ने कमंडल उठा घर से, तो पत्नी से इजाजत लेके आ गए थे और कमंडल उठा करके वो चल दिए। अब जनक देवतागण देखते रह गए, इतने बड़े पंडित, वो तो कोई सामान्य याज्ञवल्क कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ा ही था। तुम्हारा पुण्य यही है कि तुम याज्ञवल्क का नाम सुन लेते हो बस। तो वहां कुरु पांचाल देश के बड़े बड़े पंडित विद्वान रहते थे उसके पास में याज्ञवल्क्य। उसने कहा क्या है? उसने कहा यही सन्यास का स्वरूप है, छोड़ के चल दिया तो फिर कोई बात नहीं, फिर अतीत से उसके बाद याज्ञवल्क्य के जीवन का उल्लेख नहीं मिलता शास्त्रों में, यही अंतिम उल्लेख है उनके जीवन का। तो सबसे पहले है साधक को अपने साधनों की तैयारी करनी चाहिए। तो नास्ति बुद्धि अयुक्त से पहले बुद्धि शब्द दिया फिर अयुक्त शब्द दिया, मैंने युक्त होना चाहिए व्यक्ति को। युक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? बोले गुरु के पास में जाना चाहिए, लेकिन लक्ष्य जो है वो ख्याल रखना चाहिए। क्या ख्याल रखना? हमारे एक पंडित जी हैं विश्वनाथ जी, वो कभी कभी अच्छे पंडित हैं, आप लोग यहां भी आते हैं प्रेमपुरी में, पहले हरिभाई के समय वही पंडित थे यहां पे, मारवाड़ी पंडित है। वो बोलते हैं कभी कभी फाइव स्टार होटल में शादी करने जाते हैं तो वो बोलता है महाराज फटाफट करा दो, अभी दो मिनट के अंदर जो है ना शादी फटाफट करा दो, अभी जल्दी आज टाइम नहीं हमारे पास में है, बोलो शुरू करना है जल्दी जल्दी। वो भी बोलते हैं हम भी शॉर्टकट जानते हैं।
आप यदि युक्त होना चाहते हैं, ऐसी बुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं जो बुद्धि आत्मा को समझे, जो बुद्धि आत्मा को जाने, उस बुद्धि को यदि आपको प्राप्त करना है तो आचार्य के पास में जाना है और लक्ष्य वो रखना है। हमने पंडित को क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? लड़के और लड़की का संबंध कराने के लिए। ऐसे गुरु का अर्थ यह होता है कि जीवात्मा और परमात्मा का संबंध कराने के लिए। क्यों बनाए थे गुरु? और प्रायः मनुष्य की सबसे ज्यादा ये हिंदुओं की ये भूल हो जाती है, वो मिलाने वाले से ही मिल जाते हैं, जिससे मिलना है उसको ही भूल जाते हैं। और क्योंकि मिलाने वाले जो पंडित होते हैं वो हजारों होते हैं, मिलने वाला एक ही है, और हजारों के चक्कर में पड़ने वाले आदमी भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं जाल में उलझ जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं ना बुद्धि शब्द का अर्थ समझ गए, आत्मा को समझने वाली, युक्त शब्द का अर्थ समझ, गुरु के पास में जाके श्रवण मनन और निधि ध्यासन करके करने के साथ में यहां ये भी बताया कि सेवा। तो श्रवण मनन और सेवा करने के बाद जो अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन के बाद जो साधक को बुद्धि प्राप्त होती है उसका नाम है युक्त। तो समझ गए, युक्त का भी अर्थ समझ गए, बुद्धि का अर्थ भी समझ गए। अच्छा, भावना का आगे बताएं, नचा अयुक्तस्य भावना, जो व्यक्ति अयुक्त है, जिसमें सम नहीं, जिसमें दम नहीं, जिसने कभी किसी की सेवा न की हो, उस व्यक्ति के अंदर कृष्ण कहते हैं कि भावना पैदा नहीं हो सकती। भावना समझते हैं? सजातीय प्रत्यय प्रवाह भावना, एक कृष्ण के आकार की, कृष्ण तो कहते हैं कोई आकार की जरूरत ही नहीं है, आत्मसंस्तम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत, गीता का छठा अध्याय। सच्ची साधना तो वो है जिस समय आप
मन को इतना निग्रह कर लेते हैं, मन केवल आदमी के केवल होने का एहसास होता है बस। विजातीय प्रत्यय एकदम शून्य हो जाता है,
एक भावना बन जाती है। एक बारी स्वामी माधवानंद जी बता रहे थे, कहीं पे त्यागमूर्ति जी के साथ गए हुए थे, तो सपने तो सबको आते हैं, तो त्यागमूर्ति जी भी सोए हुए तो उनको भी सपना आ रहा था, तो कुछ गुनगुना रहे थे वो। तो माधवानंद जी महाराज ने तो पूरा मुंडक का पाठ उखर दिया उन्होंने, बोलो आप विचार करो आप थोड़ा सा।
सपने में भी तो वही चलता है जो जागृत में हमारे मन में होता है। ऐसा एक प्रत्यय भावना उसी को कहते हैं। बुद्धि शब्द का अर्थ आप समझ गए, युक्त शब्द का अर्थ आप समझ गए और भावना शब्द का अर्थ चल समझ गए। ये युक्त होना सबसे कठिन काम है और फिर जब भावना बन जाती है उस भावना में फिर आपको रस आता है। उस भावना में आपका जिसके साथ चिंतन हो रहा है उसके साथ में थोड़ी एकता होती है आपकी, उस एकता प्राप्त करने के लिए पीछे की चीजें सब याद रखनी पड़ती है। कोई सोचे अचानक नचिकेता बन जाए, कोई सोचे अचानक बुद्ध बन जाए, कोई सोचे अचानक शंकराचार्य बन जाए, ये संभव नहीं है। इसके लिए पहले उन्होंने युक्तता प्राप्त की, पहले युक्तता प्राप्त की है और वो जो युक्तता है वो स्वरूप के बारे में इतनी गहरी जिज्ञासा पैदा कर देती है कि दुनिया का कोई रूप उसे अपने में अटका नहीं सकता। जैसे उदाहरण के लिए नचिकेता के चित्त में स्वरूप की जिज्ञासा इतनी गहरी थी कि महाराज यमराज ने उसके सामने जो रूपों का जाल बिछाया, जो प्रलोभन दिए, उस व्यक्ति का मन उस तरफ गया ही नहीं। उसका कारण क्या है, हमारा क्यों चला जाता है, उसका कारण समझा आपने क्या है? उसका कारण है वो व्यक्ति युक्त था। श्रवण मनन और सेवा उस व्यक्ति के चित्त में विद्यमान थे, इसलिए उस व्यक्ति की बुद्धि जो है कैसी बनी थी, आत्मा के स्वरूप को जानने की बुद्धि बनी थी। इसलिए वो व्यक्ति किसी दूसरी चीज में नहीं उलझा। कितनी चीजें आ गई, क्योंकि भावना का अर्थ हो गया कि विजातीय प्रत्यय कोई उसके अंदर आता ही नहीं है, बस एक ही है, बस वही जानना है मेरे को, बस उसके सिवाय कोई जानना नहीं है। इसी का अर्थ है विजातीय प्रत्यय का अभाव, और विजातीय प्रत्यय का जो अभाव है उसी का नाम है भावना। नचिकेता ने एक ही रट लगा रखी है बस, वो बोलता ये ले ले, बोले नहीं, ये ले ले, बोले नहीं, ये ले ले, बोले नहीं। उसके ध्यान में एक ही बात है। अच्छा, एक बात ये होती है, ये तो व्यक्ति युक्त था लेकिन थोड़ा संदेह भी पैदा हो जाता है ना, आखिरकार ये व्यक्ति आत्मज्ञान देना क्यों नहीं चाहता है, क्या राज है इसमें, सब कुछ देने के लिए तैयार है लेकिन आत्मज्ञान नहीं दे रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि देना तो आसान है, फिर जब लेने की कोशिश करें फिर वापस लेने में कठिनाई हो जाए, जैसे नीतीश कुमार को हो रही है। देखो आप बड़े घुटनों के जोर लगा दिए लेकिन बेचारा वो हमारा अभ्यास है, विषयों में हमको रस तुरंत आने लगता है। नचिकेता ने कहा हमें नहीं चाहिए, बात खत्म हो गई। उसी का नाम है भावना, कि एक ही प्रत्यय जो है वो सतत उस प्रत्यय के अंदर एक ऐसी भावना बन गई, हमें उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, बात हो गई खत्म। और ये बुद्धि जो बनती है, और शंकराचार्य का कहना यह है, मैंने दो तीन और टीकाएं पढ़ी लेकिन कहीं हमको जची नहीं बात। शंकराचार्य का कहना है कि ये युक्तता जो व्यक्ति को मिलती है ये श्रवण मनन और सेवा से प्राप्त होती है, और ये इतनी दृढ़ होती है, जो श्रवण मनन और सेवा से प्राप्त होती है ये इतनी दृढ़ होती है कि फिर कुछ बात ही नहीं है, फिर एक जीवन का लक्ष्य साफ साफ मालूम पड़ता है। परमात्मा के सिवाय हमारे जीवन में चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, वो केवल एक साधन है, गुरु है, उसका काम है हमें रास्ता दिखाते हैं। लेकिन मंजिल तो परमात्मा है, मंजिल दो नहीं हो सकती। और हमारी मुसीबत क्या होती है, हम व्यक्तियों को समझ पाते हैं और परमात्मा को नहीं समझ पाते। व्यक्ति है, उसको खुश करने में क्या रखा हुआ है, महात्मा भी हैं आप लोगों के, गले में एक मोटा हाथ डाल दो, 500 की नोट चढ़ा दो, खुश। कृष्ण के गले में तुम फूलों की हार डालो, महादेव के 1000 कमल चढ़ाओ, कभी देखते भी नहीं तुम्हारी तरफ, तो तुमको लगता है क्या फायदा यार इसको चढ़ा करके। 1000 लीटर दूध चढ़ा दो, देखता पर बाबुलनाथ में जाके देखो आप नहीं। तुम्हें मालूम पड़ेगा जिस दिन, अरे दूध भी वही चढ़ा रहा है। इसलिए व्यक्तियों को खुश करना बड़ा आसान है, व्यक्तियों को पकड़ना जिंदगी में बड़ा आसान है, लेकिन परमात्मा को खुश करना कठिन का, क्योंकि वो हमेशा ही खुश है। पकड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उपनिषद में लिखा है यन मनुषा न मनुते ये नाहुर मनोर्मतम। मैंने कभी आपको दृष्टांत देकर के समझाया था कि जब हम रोटी पकाते हैं तो रोटी पलटते हैं, चिमटा उसको चिमटा बोलते हैं ना, चिमटा बोलते हैं। तो कितना भी कुशल कारीगर हो, जिन उंगलियों ने उस चिमटे को पकड़ा है, चिमटा रोटियों को तो पकड़ सकता है लेकिन चिमटा उन उंगलियों को नहीं पकड़ सकता। पकड़ सकता है कितना भी कुशल है, लेकिन चिमटे से आप रोटियों को पकड़ सकते हैं लेकिन चिमटा इन उंगलियों को नहीं पकड़ सकता। पकड़ सकता है, मन सारी दुनिया को पकड़ सकता है लेकिन परमात्मा को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि मन को परमात्मा ने पकड़ा हुआ है, कैसे पकड़ेगा उसे। हां अनुभव कर सकता है कि मुझे भी किसी ने पकड़ा हुआ है, और जैसे ही यह अनुभव हुआ कि मुझे भी किसी ने पकड़ा हुआ है तो आदमी का अहंकार तो ऐसे ही आधा गलित हो जाता है। आधा तो ऐसे ठंडा हो जाता है। इसलिए बोध जो है वो आदमी को बहुत सारे पापों से मुक्त कर देता है। इसलिए बता रहे चलो, ये बुद्धि मैंने समझ क्या हो गया, आत्मा का, आत्मा के स्वरूप को जानने का नाम हो गया बुद्धि। युक्त शब्द का अर्थ हो गया श्रवण मनन और सेवा से उपलब्ध जो होती है उसका नाम है युक्त बुद्धि। श्रवण मनन और सेवा, इससे उपलब्ध वो जो बुद्धि हो गई। अच्छा, और भावना शब्द का अर्थ कर दिया कि सजातीय प्रत्यय प्रवाह, एकदम जैसे यहां तो नहीं लिखा है, लेकिन हम जो सोचते हैं आप जो सोचते हैं जानते हैं इतने दिनों में ये नचिकेता का एक ही प्रवाह चलता रहा कि मेरे को केवल आत्मा के बारे में ही जानना है। अब उसके बीच में कितने भी प्रलोभन आ जाएं, कुछ भी आ जाएं, मुझे आत्मा के सिवाय और कुछ नहीं जानना, इसका नाम है सजातीय। एक ही बस बात है, बस उसके अलावा और कोई बीच में नहीं है। अच्छा, आगे शंकराचार्य कहते हैं, नचा आभावयता शांति ही। जिस व्यक्ति के अंदर भावना नहीं है उसके अंदर शांति नहीं हो सकता। शांति एक जीवन की बहुत बड़ी चीज है। गुण जब शांत होते हैं तब व्यक्ति को शांति मिलती है। जब कभी आप अपने में होते हैं शांति मिलती है। जब आपके साथ में कोई नहीं होता और आप होते हैं, मन निष्क्रिय हो जाता है, भौतिक पदार्थों से जुड़ने के जितने साधन हैं उन साधनों पे पूरी तरह या तो आपका नियंत्रण हो और या तो कुदरती रूप से वो लय को प्राप्त हो जाए, जैसे सुसुप्ति में, तब आदमी को शांति मिलती है। कृष्ण कहते हैं नचा अभावयता शांति। जिस व्यक्ति के जीवन में विकल्प पे विकल्प उठते रहते हो, क्योंकि भावना का अर्थ क्या कर दिया, सजातीय प्रत्यय प्रवाह कर दिया, और अभावयता का मैंने अभी ये अभी वो, अभी ये अभी वो, देखिए कोशिश करिए। कभी हम देवता बदलते हैं, मंदिर बदलते हैं, गुरु बदलते हैं, लेकिन काश कभी हमने अपने को बदलने की कोशिश की होती तो बहुत बड़ी बात हो गई होती। दूसरे को बदलना बड़ा आसान है, अपने को बदलना बड़ा कठिन काम है। दुनिया में सबसे कठिन काम है अपने को बदलना। और जब आदमी अपने को बदलता है ना, कहा ना आपको मैंने कभी, गालिब ने शायद कहीं लिखा है कि जिंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल तो चेहरे पे थी और शीशा साफ करता रहा। धूल तो जमी थी कहां, चेहरे पर, और शीशा साफ करता रहा। शीशा रगड़ रगड़ के हाथ घिस गए, लेकिन चेहरा वैसा काले का काला दिख रहा है। काश कभी हाथ पीछे की तरफ ले आए होते, कभी अपनी तरफ मुड़ के देख लिया होता। इसलिए शंकराचार्य ने कहा कि स्वरूप का अनुसंधान करो, रूप क्या है, एक सहारा है। जैसे उदाहरण छोटा सा दूं आपको, बात समझ में आ जाए। कोई आदमी थोड़ी थोड़ी अभी गया है कहीं, बीमार हो गया, थोड़ा सा गिर गया चलते हुए, हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो शुरू शुरू में धीरे धीरे वो लकड़ी से चलता है, और कुछ समय के बाद वो लकड़ी छूट जाती है। वो सहारा था, तभी लकड़ी सहारा था। और जब आप ठीक हो जाते हो तब वो आपके लिए बोझ बन जाता है। ऐसे जितने साधन हैं ये सब सहारे हैं। और हमने सहारों को इतना पकड़ लिया, हम धीरे धीरे बेसहारा बन गए।
पुराने जमाने में हम लोग हरिद्वार में रहते थे, आपको बता रहा हूं 72-73 की बात बता रहे हैं, तो आश्रम में रोटी आप लोगों को मालूम है पुराने जमाने की बात। तो पुस्तक रटते थे, तो पुस्तक रटते थे तो फिर जो है एक एक एक, एक, एक पेज रटा, एक पेज रटने के बाद उसमें 3 श्लोक रटे, तो फिर पुस्तक नीचे कर देते थे और फिर कोशिश करते थे बिना पुस्तक के पढ़े, तो फिर ऐसा करते करते याद हो जाता था। बहुत सारे लोग आप लोगों में बैठे होंगे जिनको विष्णु सहस्त्र नाम याद है, गीता भगवत गीता याद है, ये याद है, या याद है। तो जब ये चीजें याद हो जाती हैं तब आपको पुस्तक की जरूरत नहीं पड़ती। तो इतनी ही जगत में जितनी चीजें ये हैं, ये सब सहारे हैं। शंकराचार्य ने कहा ये सब सहारे हैं सब, लेकिन धीरे 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 सहारों की ऐसी आदत पड़ जाती है, हम अपनी स्वतंत्रता ही खो बैठते हैं। कृष्ण की मूर्ति के बिना तभी तुम्हारा ध्यान लग जाए, और जिस दिन कृष्ण की मूर्ति के बिना तुम्हारा ध्यान लग गया उस दिन बाहर का कृष्ण गायब हो गया और अंदर का कृष्ण जो है सक्रिय हो गया। बाहर का कृष्ण, बाहर की मूर्ति, ये सहारा है अंदर वाले को जागृत करने के लिए। लकड़ी सहारा है, एक महीना, दो महीना, दो महीने के बाद लकड़ी छोड़ के फिर भागने लगता है। और आजकल तो कॉमन हो गया, घुटने का ऑपरेशन कराते हैं शुरू शुरू में, बाद में बिल्कुल लकड़ी के बगैर चलने लगते हैं, लेकिन वो पहले ही दिन सोचेगा हम बिना लकड़ी के चलें तो फिर चलना मुश्किल है। इसलिए जीवन में कभी सहारे लेने भी पड़ते हैं और सहारे छोड़ने भी पड़ते हैं। लिए ही जाते हैं छोड़ने के लिए, हमेशा पकड़ने के लिए यदि सहारे लिए तो फिर क्या लिए, फिर तो व्यक्ति पंगु हो गया। इसलिए कृष्ण कहते हैं नचा अभावयता शांति, भावयता का अभावयता, भावयता का अर्थ हो गया एक सजाती, एक ही प्रत्यय चल रहा है, वो बस एक ही, वो बस नचिकेता एक ही बात रो रहा है, नहीं मेरे को बस आत्म ही, बोले ये ले ले, ये दुर्लभा मनुष्य लोके, बोले ये ले ले, बोले महत भूमि आयतन, बोले नहीं मेरे को वही चाहिए, वही चाहिए। इसका नाम है वास्तविक में निधिध्यासन। जो आदमी अपने लक्ष्य पे इतना अडिग है, एक ही ध्यान उसका है बस, इससे बड़ा निधिध्यासन का दृष्टांत आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। ऐसा सजातीय प्रत्यय, एक ही प्रत्यय उसके अंदर बह रहा है बस, यदि देना है तो ये दो और बाद बाकी ये सब तुम्हारी तुम्हारी जितनी चीजें हैं ये तुम्हारे साथ में। ऐसा भी बोला वो आदमी, भी बड़ा चालाक था। कौन? हाँ, ब्राह्मण बहुत चालाक होता है। मरे तो दक्षिणा ले ले, पैदा हो तो दक्षिणा ले ले, शादी हो तो दक्षिणा ले ले। उसने कहा देखो महाराज, जितनी चीजें आप पढ़ना आपका ठोकनी से, ऐसा नहीं कि हम ऐसा नहीं बोलते हैं, पंडा वहां। उसने कहा महाराज ये तो सब मिल ही जाएगा, अब आपके दर्शन हो गए तो सब तो मिलेगा ही हमको। ये तो मिलना ही है, आप जैसे महात्मा के दर्शन हो गए ये तो मिलना ही है, लेकिन ये कोई फल नहीं है। कमाल की बात कर दी उसने तो। आप पढ़ो कभी उस, क्या मैंने आपको कभी बताया क्या उसका दिमाग है? भगवान शंकराचार्य जैसे व्यक्ति ने, आपने सब उपनिषद पढ़े होंगे,
नाम लेकर के किसी व्यक्ति को यदि नमस्कार किया है तो केवल नचिकेता को नमस्कार किया है कठोपनिषद के अंदर, वो भी मंगलाचरण में। मैं ब्रह्म विद्या के आचार्य यमराज को जिस प्रकार से नमस्कार करता हूं नचिकेत से च, ऐसा लिख दिया। च शब्द का अर्थ होता है और, जैसे मैं ब्रह्म विद्या के आचार्य नचिकेता को नमस्कार करता हूं, यमराज को नमस्कार करता हूं, वैसे नचिकेता को भी नमस्कार करता हूं। क्या आदर है शंकराचार्य की दृष्टि में नचिकेता का, दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक है, इससे बड़ा दर्शन कोई लिख नहीं सकता है, सोच नहीं सकता है, विचारों की इससे बड़ी उड़ान हो नहीं सकती, ब्रह्मसूत्र से बड़ी उड़ान। लेकिन वो व्यक्ति कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को नमस्कार, क्योंकि उस व्यक्ति की एक कभी पढ़ता हूं कठोपनिषद कभी, तो बड़ा आनंद आता है उसका लिखा, जो उसके एक एक जो उसके लिखने का तौर तरीका कभी पढ़ा मैंने, कि ये तो मिल ही जाएगा जो तुम जितना देना चाहता है, क्योंकि तुम्हारे दर्शन हो गए अब तो, कमाल की बात है, नहीं लेते हुए भी सब कुछ ले लिया। हम कुछ, हम लोग ऐसे हैं कि सब कुछ लेते हुए भी कुछ नहीं ले पाते दुनिया में। क्या पाया हमने? और एक ख्याल रखना, जो तुमने पाया कभी जिनसे पाया उनकी याद करोगे तो तुमको लगेगा कि हकीकत में तुम मालिक नहीं हो, तुम तो भिखारी हो, तुमको तो ऐसे ही मिला हुआ है, भिक्षा में सब कुछ मिला हुआ है, मालिक तो कोई और है इसका। इसका नाम है भावना, एक सातत्य, एक प्रत्यय जो है इसमें, बिल्कुल एक ही उसकी जिद है शुरू से लेकर के। अच्छा, जहां उसकी उसने अपने लक्ष्य में अल्टरनेटिव रखा, विकल्प रखा, वहां समझो जाल में उलझा। और ये जाल फैलाने वाली है मौत। लेकिन ऐसा भी कोई माई का लाल पैदा हो गया जो मौत के बिछाए हुए जाल में स्वयं नहीं उलझा, और जिसने यमराज को ही उस जाल के अंदर उलझा दिया। देख लीजिए, स्वामी जी ने लिखा है, विवेकानंद जी महाराज ने, पांच नचिकेता हो तो सारी दुनिया बदली जा सकती है। उस समय, आज तो एक भी नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। कैसा उस व्यक्ति की सोच है? ऐसा उलझा दिया उसने कि यमराज देने के लिए तैयार हो गया। और देने में भी मजा तब है जिस व्यक्ति को देकर के खुशी हो, उसी को देना चाहिए। हम किसी को 100 रुपए देते हैं दारू पी ले, दुख होता है। जिस आदमी ने कभी प्रेमपुरी को बनाने के, इस हॉल को बनाने के लिए कुछ दिया होगा, वो कितना पुण्य आत्मा रहा होगा। जहां शास्त्रों की चर्चा होती है, उपनिषदों का ज्ञान बढ़ता है, हर अर्थ ऐसा नहीं होता कि वो परमार्थ के लिए उपयोगी हो। हर अर्थ कहीं ना कहीं व्यवहारिक जाल में उलझ करके रह जाता है। इसलिए नचा भावयता शांति, शांति नहीं मिलती कहते हैं उसको। अच्छा, थोड़ा सा शांति क्या चीज है? शंकराचार्य ने बड़ा अच्छा अर्थ किया, शांति ही उपशमा, उपशम शांति है। जैसे आप की इंद्रियां, मन, नींद में सब लौट आते हैं, कोई आदमी है बिल गेट्स है और बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग हैं, वो एक घंटे में कितना डॉलर कमाते हैं आपको पता है? लेकिन एक घंटे में जो डॉलर कमाते हैं उससे भी ज्यादा उनको आनंद मिलता है किसमें, जिस समय उनको एक घंटे गहरी नींद आ जाती है। बिल गेट्स से आप पूछो और किसी से पूछो, वो कभी बोल देगा मुझे शादी में आने का टाइम नहीं है। अपने पास तो टाइम ही टाइम है, और किसी के लिए है, शादी के लिए तो ही, खाने को जो मिलता है वहां पे, घर में बहू टोकती है नहीं मीठा नहीं खाना तेरे को शुगर है, वहां तो जबरदस्ती कहते हैं खा लो क्या फर्क पड़ता है, एक टुकड़ा खाएगी मर थोड़ा ही जाएगी, उसको भी बड़ा अच्छा लगता है। घर में छीनते हैं एहसास होता है, जब छीनते किसी से कोई खाना छीने ना तो बड़ा बुरा लगता है। घर में सब छीनते हैं क्योंकि शुगर बढ़ गई तो फिर क्या होगा फिर उसका, और वहां आग्रह करके देते हैं, वो बोलेगा मेरे को टाइम नहीं है आपसे मिलने का। यदि मोदी भी चाहे हर सप्ताह बिल गेट्स से मिलना तो नहीं मिल सकता वो व्यक्ति, इतना बिजी है। लेकिन सोने के लिए वो कह नहीं सकता कि मेरे पास में टाइम नहीं है, वो तो सब ताला बंद करके, और उसको उसका नाम है उपशम, उसका नाम है उपशम। शंकराचार्य उपशम का अर्थ करते हैं शांति, जहां सब व्यवहार छूट जाते हैं, जहां हमारे सिवाय कुछ नहीं होता। सोने जब आप गहरी नींद में जाना चाहते हैं तो पत्नी को भी बोलते हैं देवी अब चुप बैठ तू, पोते को भी बोलते हैं तू जा अपनी जगह, सब सबको आप क्यों हटा देते हो? इसका नाम है उपशम, आप पूरी तरह से अपने में लौट आते हो। और वही व्यक्ति पूरी तरह से अपने में लौट सकता है जो व्यक्ति युक्त हो, और युक्त होने के लिए जिस व्यक्ति ने कभी किसी गुरु के पास में जाके प्रेम से सुना हो, श्रवण किया हो, सेवा की हो, और फिर वो व्यक्ति युक्त बन गया हो, फिर उसकी नचिकेता जैसी भावना बन गई हो, और फिर वो व्यक्ति लौटना चाहता है, ये लौटने के ही तो तरीके हैं। उसमें लिखा है कठ उपनिषद में नचिकेता जो बोलता है, ये दुर्लभा मनुष्य लोके तान वृणीस्व। अरे धरती पर आज तक ऐसी स्त्रियां किसी ने देखी नहीं होंगी, ऐसी स्त्रियां मैं तुझे देता हूं, ये दुर्लभा मनुष्य लोके, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा पद, ऐसी प्रतिष्ठा। लेकिन वो वही गाना गा रहा है, कौन सा? हाँ, जैसे जसोदा बोले कि तू ये दूध पी ले, खीर खा ले, बोले नहीं मुझे तो चंदा ही चाहिए, ये ले ले, बोले नहीं मुझे तो चंदा ही चाहिए। इसका नाम है भावना, कोई विजातीय प्रत्यय बीच में ये इसको बोला, ये बनता है किससे? युक्त होने से। और युक्त होने के बाद जब इतना सब कुछ होता है, फिर उस व्यक्ति के जीवन में किसकी जरूरत होती है? उपशम। फिर वो लौट आता है अपने में, आंखें रूप से हट जाती हैं, कान शब्द से हट जाते हैं, सारी इंद्रियां अपने विषयों से हट जाती हैं। शंकराचार्य ने कहा उसी का नाम है शांति। वो बहुत अच्छा अर्थ करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, और शांति ही उपशमः, अशांतस्य कुतः सुखम्। और कहते हैं जो व्यक्ति अशांत है, अशांत व्यक्ति को जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकता, अशांति में सुख नहीं है। और अर्थ तो बहुत बड़ा कर दिया, अभी टाइम भी पूरा हो गया। एक लिखा है अशांति का कारण क्या है? इंद्रियाणाम विषय सेवा तृष्णा तो हमेशा फिर विषयों की तरफ ही चलता है।
यहां कहीं शांति नहीं है। मैंने कभी आपको बताया भी है, भर्तृहरि जी महाराज ने लिखा है एक वाक्य, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भर्तृहरि कहते हैं राजा थे, अपना अनुभव बताते हैं, हमने सोचा बूढ़ा होऊंगा कहीं गंगा किनारे जाऊंगा, भजन करूंगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। बोले क्या हुआ कि तृष्णा तो बूढ़ी नहीं हो गई, मैं बूढ़ा हो गया। और अंतिम में तो बहुत बड़ी बात लिख देते हैं वो, कालो न या तो वयमेव याता। वो भजन करने का समय तो नहीं आया, अपना ही समय आ गया। इसलिए अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। अब 66 श्लोक जो है ना पूरे हो गए, अभी पूरे के पूरे, आगे की चर्चा कल।